तो हम सभी पुरुषार्थ में, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में स्वचिंतन को बहुत महत्व दें। जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया है, जो सेवाओं में लगे हैं, जो ग्रस्त में रहते हैं, सभी को स्वचिंतन करना है। पहले समर्पित वालों को जीवन अर्पित कर दिया, सब कुछ तेरा कर दिया, तो बाबा से सब कुछ लेकर ही रहेंगे। ऐसा ना हो जब हम इस संसार से जाएं, तो हमारे मन में अरमान रह जाएं कि बाबा हमें सब कुछ देने आया था, हमने क्यों नहीं लिया, हम कहाँ लगे रहे। देख लें अपने को कहाँ लगे रहते हैं। व्यर्थ न भी हो तो भी हमें केवल सेवाओं में ये पूरा जीवन नहीं देना है। सेवाएं बहुत सुंदर चीज है, भाग्यवान आत्माओं को सेवा मिलती है, सेवा करने वालों पर बाबा की भी नजर आती है। परंतु सब जानते हैं बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना सुंदर ईश्वरीय अनुभूतियों के ये जीवन भी सूखा हो जाता है। अनेक चीजें हैं हमारे सामने, माया से भी युद्ध है, तो अपने संस्कारों से भी युद्ध होता है। संगठन में भी थोड़ा बहुत हो जाता है, उसे युद्ध तो नहीं कहेंगे, पर कुछ तो हो जाता है। हमें अपने को बदलना है। शिकायतें तो बहुत की जा सकती हैं, मैं थोड़े में ही कह रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वो ये करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। शिकायतें तो की जा सकती हैं, परंतु शिकायतों से ऊपर उठकर अपनी स्थिति को एग्जाम्पल बनाना, ताकि हमें देखकर औरों की शिकायतें भी पूरी हो जाएं, इसकी बहुत आवश्यकता होती है। अपने को चेंज करना, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको जो थोड़ा पावरफुल उदाहरण है, लेकिन उससे बहुत फायदा होता है। मैंने अपने जिस तरह से शुरू किया जीवन में, जब मुझे कहा गया तुम किचन में जाओगे दीदी मनमोहिनी ने, तो मैं तो हाँ कह दिया, क्योंकि मैं ना कहता ही नहीं। वहां वाले लोग मुझे डराने लगे, किचन में बहुत माया है। सच तो ये कि मुझे पता नहीं होता था ये माया किसे कह रहे हैं। मुंबई में हम गए, लोगों ने कहा बॉम्बे माया नगरी है। हाँ, हम तो सारे में घूमे, हमें तो समझ में नहीं आया कि ये माया नगरी क्यों कहते हैं इसको। सब तो अच्छा अच्छा लग रहा था। बाबा की मुरलियों में आता रहा, रोज सुनते हैं, ज्ञानी आत्मा वो जो मान अपमान सुख दुख हार जीत निंदा स्तुति में समान रहे। कोई निंदा करे ही नहीं और हम खुश हों कि हम तो समान रहते हैं। तो जब हम पढ़ते थे, मुझे हिंदी साहित्य का बड़ा रस था, एक लेख था हमारी हिंदी साहित्य में निंदा रस, निंदा रस। कर्मेंद्रियों का रस तो आपने सुना होगा, पर निंदा रस भी कर्मेंद्रियों का रस है ना। किसी की निंदा हो रही हो, चार लोग बैठे हो, बड़ा आनंद आता है। और सुना हो निंदा रस। तो जब बाबा की ये बात मैंने सुनी, मान अपमान हार जीत सुख दुख में समान रहना है, तो मैंने इसको इस तरह लिया संगठन को कि लोग कुछ बोलें हम समान रहें, ये न सोचेंगे कि ये क्यों बोलते हैं, ये सोचेंगे मुझे किस स्थिति में रहना है। बहुत अच्छा रहा, इससे बहुत अच्छा रहा। और एक बहुत सुंदर लहर उन दिनों चलती थी, बहुत अच्छी वो लहर होती थी कि लोग तुम्हारी परीक्षाएं तो लेंगे ना। फिर मैं सोचता आया, देखता आया कि किसी को बहुत बड़ी अच्छी नौकरी चाहती है, भारत में आईएएस कहते हैं, आईपीएस, ब्रिटिश सरकार ने शुरू की थी आईसीएस के नाम से, इंडियन सिविल सर्विस। तो जितनी बड़ी पोस्ट के लिए कंपटीशन एग्जाम होते हैं उतने ही पेपर हार्ड आते हैं। मुझे बताते हैं बहुत सारे आईएएस ब्रह्मा कुमार कुमार भी कंपटीशन देते हैं, लड़कियां लड़के सब। मैं पूछता हूँ क्या क्या आता है, कहा 400 क्वेश्चंस और टाइम लिमिट, सोचने का मौका नहीं मिलता। बुद्धि की परीक्षा होती है, सच तो यह है, टिक करना होता है, थोड़ा कुछ लिखना होता है टिक ही करना होता है, चार लिखा है ऑप्शन एक पर टिक करो, और अगर घबरा गए तो कुछ का कुछ दिखाई देता है, आगे की लाइन पीछे पीछे की आगे। तो बड़ी पोस्ट के लिए बड़ा एग्जाम होता है ना, हिमालय की ऊंची चोटी पे चढ़ना है, चढ़ने वाले जानते हैं मर सकते हैं, तूफान बहुत होंगे, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, स्लिप हो जाएंगे, तो गए फिर भी चढ़ते हैं। हमारा पद सबसे बड़ा कौन सा है, विश्व महाराजन। तो एग्जाम छोटा हो गया या बड़ा, बोलो, पेपर छोटा सा हो गया या बड़ा, हो गया, होना चाहिए या नहीं। जब बाबा साकार में थे तो हम लोगों के संगठनों में एक बात प्रचलित होती थी कि जब पानी का मटका खरीदने जाते हैं, उन दिनों फ्रिज का जमाना नहीं था, मटकों का पानी ही सबसे अच्छा आज भी होता है, तब घर घर में मटके होते थे। हमें याद है जब हम छोटे थे मटका मिलता था 25 पैसे का, एक रुपए का भी चौथा हिस्सा। तो क्या करते थे लोग, हम भी जाते थे, छोटे छोटे बाजार लगते थे ना पास में, हम भी जाते थे बड़ों के साथ, तो एक मटका खरीदना है तो लोग मटके को ठोकते हैं, इधर कुछ देखते थे, ठीक है कच्चा तो नहीं, पहेगा तो नहीं। तो एक कहावत प्रसिद्ध थी हम लोगों के संगठनों में कि 25 पैसे का मटका खरीदने के लिए भी ठोक बजाई करते हो तो भगवान राजा ही देगा तो ठोकेगा नहीं। चांद पर लोगों को भेजा गया, उसमें बड़े साइंटिस्ट भी बैठे होते थे, मिलिट्री के पावरफुल लोग भी, उनकी बहुत कड़ी परीक्षा होती थी, आपने सुना होगा कितना टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सकते हैं, उनको मरने का डर तो नहीं है, भूख पानी कितना टॉलरेट कर सकते हैं, सब प्यास लगेगी न कुछ मिले, रॉकेट से बाहर निकलेंगे भटक गए घबराएंगे तो नहीं, एक बहुत पावरफुल टेस्ट उनका होता था। तो विश्व महाराजन बनना है, दो युग तक जिन्हें विश्व को संभालना है, दो युग सोच कर देखें, उन्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा ही। ये परीक्षाएं हमें बहुत पावरफुल बनाती हैं, परीक्षाओं के बिना मनुष्य कच्चा और कमजोर रह जाता है। इसलिए इन परीक्षाओं से घबराना नहीं है। सोचना यह है कि हर पेपर में अधिक से अधिक मार्क्स लेने हैं। स्थिति बिगड़ गई तो मार्क्स कम, स्थिति एक रस रही तो मार्क्स फुल। अब सब सोचेंगे मेरे साथ, आप सभी अपने परिवारों को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए कितने घंटे काम करते हैं। मेहनत, कोई एक बता रहे थे मुझे, बहनाई उसकी हांगकांग में रहती है, कहती है तुमने मुझे हांगकांग में भेज तो दिया, बैंक में सर्विस है, बहुत सैलरी देते हैं, परंतु 20 घंटा काम करना पड़ता है। सोचो 20 घंटा कोई मनुष्य कर सकता है? कहा थक गए हैं, सोने को भी ठीक से नहीं, भाग दौड़ के खाना है। मैं सोचता हूँ, जब मैं ऐसी बात सुनता हूँ तो मैं अपने से पूछता हूँ, मनुष्य अपनी आजीविका के लिए 12 घंटे 16 घंटे मेहनत कर रहा है, अच्छी नौकरी मिल जाए, स्टूडेंट्स अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी पढ़ाई, अच्छे कंपटीशन देते हैं। हमारे यहाँ भी हम देखते हैं भारत में युवकों में आजकल बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना है और बहुत अच्छा कर रहे हैं युवक। बहुत आपने सुना ही होगा भारत में 66 करोड़ युवक हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और उम्मीद है उनसे बहुत। और मैं सोचता हूँ कि इतने टैलेंटेड लोग हैं, कुमार युवक और लड़कियाँ, कि अगर उनमें अच्छी धारणाएं भी हों जो बाबा की हैं तो देवता हैं सचमुच। तो मैं सोचता हूँ कि मनुष्य अपनी आजीविका के लिए रात दिन मेहनत करता है। अब सोचेंगे आप सभी, 21 जन्मों की राजाई मिल रही है, 2500 साल तक कमाना नहीं पड़ेगा, कमाना ही नहीं है केवल खाना है, द्वापर युग में भी सब कुछ सहज मिलेगा, सहज बिल्कुल सहज, आधे कलयुग में भी सहज, आधे के बाद थोड़ी मेहनत। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सबको सोचना है, बिल्कुल डेप्थ में जाकर सभी सोचेंगे। हम ऐसे सतयुग में जा रहे हैं, वहाँ क्या क्या होगा उसकी तो हमें कल्पना भी नहीं है। मैंने भी यहाँ रानी का पैलेस देखा, मैं सोच रहा था हमारे कैसे होंगे उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। डाइनिंग हॉल देख रहे थे उनका, बहुत सुंदर है, अच्छा बड़ा, इससे आधा हॉल होगा और सजाया हुआ है, गोल्डन कलर किए हुए चीजों पे कांच के रखे हुए हैं, कांच में भी सजावट होती है। ड्रेस हमने उनकी देखी, मैं कहा हमारी ड्रेस, हीरे जड़े होंगे बहनों की साड़ियों में, चमकते होंगे। उनका तो वो ड्रेस देख के मुझे लगा ये तो बहुत सिंपल है, बहुत अति सिंपल। भारत के राजाओं की भी ड्रेस हम देखते हैं, वहाँ भी लगी होती हैं महलों में। हम किले देखने बहुत जाता हूँ मैं, मुझे बहुत शौक है हिस्टोरिकल चीजें देखने का, हर चीज देखते हैं, उनके हथियार, उनकी ड्रेसेज, सब कुछ। हमारे कैसे होंगे सोचो। बाबा रोज कहते हैं, आज भी था कुछ कुछ हीरे मोती सोना, ये तो ऐसे बिखरे पड़े होंगे, अथाह होंगे। आप सबने सुना होगा कुछ ही साल पहले, 4-5 साल पहले वैज्ञानिकों ने कहा था कि कुछ ग्रह, छोटे ग्रह घूम रहे हैं और धरती से टकरा सकते हैं। और फिर हुआ, बहुत अलर्ट रहे उस दिन सभी लोग, फिर हुआ कि थोड़ा ऊपर से गुजर गए, टकराए नहीं। बाद में बताया गया कि एक ग्रह जो 10 किलोमीटर रेडियस का है, हीरो का बना हुआ है, बहुत सारे ग्रह ऊपर हीरे मोतियों के ग्रह, माना स्टार्स, छोटे स्टार्स, छोटे स्टार से। ये हीरो का है और साइंटिस्ट ने भविष्यवाणी कर दी कि 2029 में ये धरती से टकरा जाएगा। तब मुझे तो लगा जरूर टकराएगा, अब के मिस नहीं होगा, पापियों का विनाश करेगा और धरती को हीरो से भरपूर करेगा, हो सकता है भारत में गिरे। अथा धन संपदा होगी, आकाश में भी धन संपदा है, जमीन में धन संपदा है, अथा है, भारत में मिलने लगी है, लेकिन उसको निकालना बहुत कठिन है। मैंने बताया था पहले भी, छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ है, मैं वहाँ बहुत जाता हूँ, बताया मुझे कि 9 किलोमीटर नीचे 10 किलोमीटर लंबी चौड़ी डायमंड्स की खान मिली है, माइंस, कितनी लंबी हो गई, भरपूर है, लेकिन निकालना बहुत कठिन है क्योंकि 9 किलोमीटर नीचे है। वहाँ की सरकार हमारे बहुत क्लोज है, पूरी ही असेंबली आ जाती है, चीफ मिनिस्टर फटाफट आ जाता है प्रोग्राम में। मैंने उस बहन जी को कहा, उन्हें कह दो निकालने की मेहनत न करें, एक झटका लगेगा सारा माल ऊपर आएगा, नहीं सब माल वो किसके काम आएगा, क्योंकि वो सब कलयुगी लोगों के लिए नहीं है, वो माल ही हमारा है, हमारे ही हाथों में आएगा। अब सोच लो सभी, ऐसा सर्वश्रेष्ठ भाग्य मिलने जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, स्वचिंतन की बहुत जरूरत है। इसलिए सभी का योग का चार्ट कितना होना चाहिए, 8 तो मुरलियों में है, प्रैक्टिकल बात करेंगे जरा, कितना होना चाहिए आशवी भाई, आप ही बता दो। 4 घंटे तो होना ही चाहिए, क्यों, क्यों भी सुने आप, माया को जीतने के लिए इतनी योग की शक्ति तो चाहिए ही, इसके बिना माया से या अपने संस्कारों से हारते रहेंगे। ये संस्कार या ये युद्ध मन को खुश नहीं रहने देगा, इस संगम युग का जो परम आनंद है उसको नहीं लेने देगा, छोटी मोटी बातों में मन मुटाव होगा, संकल्प शक्ति नष्ट होगी और जीवन जीने का सुख चला जाएगा। इसलिए प्लान बनाया होगा आपने, कल मैंने आपको 16 पॉइंट्स जल्दी में सुना दी थी, एक एक का अभ्यास और अनुभव करने की जरूरत है और ये सब कर्म में किया जाए, ये पक्का समझ लें कि बिना कर्म योगी बने कोई योगी नहीं बन सकता, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म की छाप हम पर पड़ती रहती है, और अगर हम अभ्यास करते हुए कर्म करेंगे, कुछ अच्छे अभ्यास, तो कर्म की छाप नहीं पड़ेगी, इसको कहते हैं निर्लेप स्थिति रहेगी। कर्म हम करेंगे लेकिन कर्म का कोई भी प्रभाव हम पे रहेगा नहीं, तो ऐसी अपनी सेटिंग कर लें, चाहे 1 पॉइंट प्रोग्राम बना लें, 1 पॉइंट की सारे दिन प्रैक्टिस, चाहे सारी बातों का अभ्यास कर लें, हरेक को अपने अपने अनुसार अभ्यास अपना ढूंढ लेना चाहिए। तो बहुत अच्छा चिंतन सभी करेंगे, मेहनत करने पर ध्यान दें, समय दुनिया के लिए खराब भी आ रहा है और हम सब के लिए बहुत सुंदर भी, वो समय आ रहा है। मैं आपको भविष्य की कुछ छवि बताना चाहता हूँ जो बाबा ने बताई है, ऐसा समय जिसके लिए बाबा कहते हैं तुम सब भी घड़ी घड़ी साक्षात्कार करते रहोगे। बाबा शुरू में कहते थे विनाश के समय बाबा अपने बच्चों को इन चीजों में इतना व्यस्त कर देगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा विनाश कब हो गया। साक्षात्कार होते रहेंगे, एक है साक्षात्कार होगा होना, दूसरा है साक्षात्कार कराना। आप क्या पसंद करेंगे, साक्षात्कार करने या कराने वाले? सोच के जवाब देना। करना बहुत अच्छा होगा, साक्षात्कार करने में भी बड़े आनंद होंगे, देखते रहेंगे बहुत कुछ। लेकिन साक्षात्कार कराने वाले भी हम में से ही होंगे ना कई, तो हमें साक्षात्कार मूर्त बनने की ओर कदम बढ़ाना है। साक्षात्कार वही करा सकेंगे, सोचना गहराई से। मुझे याद आई, बाबा की मुरली चल रही थी, दादी प्रकाशमणि तब ठीक ठाक थी बिल्कुल, तबीयत उनकी अच्छी थी, सामने बैठी थी, मुरली चल रही थी, कुछ बात आई तो दादी ने बाबा को कहा, बाबा साक्षात्कार का पाठ शुरू कराओ ना, बहुत समय हो गया। तुरंत बाबा का उत्तर था कि साक्षात्कार बाप को नहीं कराना, तुम्हें कराना है। जो साक्षात बाप समान बनेंगे वही साक्षात्कार मूर्त होंगे। पहली सुंदर पॉइंट। दूसरी बात, मुरलियों से ही जो साक्षी दृष्टा होंगे वही साक्षात्कार मूर्त होंगे, क्योंकि दृष्टि में बहुत पावर होगी। वो सीन आएंगे हमारे सामने कि हम दूसरों को दृष्टि देंगे और वो ध्यान में चले जाएंगे। ये पाठ शुरू में भी चले हैं बहुत, बाबा भी देता था और कई बहनें भी दृष्टि देते थे, ध्यान में चले जाते थे। तो इसके लिए अपने को अभी से तैयार करना है। साक्षी दृष्टा बहुत सुंदर स्थिति है, मुरलियां चली हैं बहुत, साक्षी स्थिति बहुत स्वीट स्थिति है। इस संसार के खेल को देखते हुए नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट साक्षी स्थिति है ये। बहुत काम करना है सभी को, ताकि हमारा चित्त बिल्कुल शांत रहे। चित्त शांत, मन शांत, इसको ही कहते हैं साइलेंस पावर। मन जब साइलेंट हो जाता है तो मन बहुत पावरफुल हो जाता है, यही याद रखना है। मन को हमें साइलेंट कर देना है, शांत, ज्ञान के बल से, योग के बल से। तो ऐसा समय आएगा, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, फिर इस पे ध्यान दें सभी, कि हमें विनाश के कई दृश्यों को, कई घटनाओं को भी शांत करना होगा। प्रकृति इतना तूफान करेगी, आपने नहीं सुना होगा, उड़ीसा में कई साल पहले तूफान आया था, थोड़ी देर के लिए ही, शायद एक मिनट चला था वो, 250 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चली थी, ट्रक भी उड़ के कहीं चले गए थे, कारें तो पेड़ों पर टंग गई थी। एक व्यक्ति ने सोचा, उसकी कहानी आई थी कि उसकी गाय बाहर है, गाय को अंदर कर लूं, जरा सा बाहर गया वो भी उड़ गया, गाय भी उड़ गई। ऐसा जब होगा, ये तो एक सीन था, एक मिनट के तूफान ने हाहाकार कर दिया था, और ये घंटों चल जाए तो जो योगी आत्माएं हैं उनको प्रकृति को आदेश देकर इसे शांत करना होगा, इसकी बहुत जरूरत होगी। इसलिए जिन्होंने साइलेंस पावर बहुत इकट्ठी की होगी, योग बल बहुत जमा किया होगा, वो दृष्टि देंगे और जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी प्रकृति शांत होने लगेगी। लोग आएंगे बहुत भयानक, जैसे आज सवेरे की जेमिनी बहन सुना रही थी बात, ये छोटी सी थी, बहुत भयानक भयानक। डरे बिना हम उन्हें दृष्टि देंगे और हमारे मस्तक से नैनों से पावरफुल किरणें निकलती हुई उन्हें दिखाई देंगी और वो भाग जाएंगे, सरेंडर कर देंगे। ये सब सीन बहुत होंगे, इसलिए अपने को इस आने वाले समय के लिए तैयार करना है। बाबा की एक बहुत अच्छी बात जो मुझे तब से ही याद है, 74 में पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल बना, तब यज्ञ के पास कुछ होता नहीं था ज्यादा, तो फर्श भी नहीं पड़ा था, उसी में बाबा को बुलाया गया, क्योंकि 400-500 भाई बहने आ गए थे, जगह नहीं थी और कहीं। कई बार तो बाहर आंगन में टेंट लगाकर भी बाबा को बुलाया गया, 1000 भाई बहने आ गए तो टेंट में ही बुलाया गया बाहर। हम तो आश्चर्यवत होकर देखते थे कि देखो भगवान, उसके लिए भी टेंट लग गया। हॉल में बुलाया बाबा को, फ्लोरिंग नहीं हुआ था, स्टेज भी नहीं बनी थी, रख दिया ऐसे ही। बाबा आए, ऊपर टीन की छत थी, तेज बारिश और तूफान बाहर था। मैं देखता था, सब देखते थे कि वो जो टीन की छत थी 4 इंच ऊपर उठे फिर दीवार पे गिरे, अंदर भगवान बैठा है और प्रकृति ये खेल कर रही है, लाइट आए जोर से बिजली कड़के। ये सब देखकर बाबा ने कहा, बहुत ही अच्छी बात थी, तब से ही मुझे याद रही ये बात, कि आगे चलकर प्रकृति बहुत भयानक तूफान करेगी, लेकिन जो बाप से कंबाइंड रहेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी और ऑलमाइटी कंबाइंड, जो इस कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, प्रकृति उनकी सुरक्षा करेगी। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे, विनाश करते आ रही होगी और तुमसे 1 फुट दूर ही शांत हो जाएगी। तो ये सुंदर सीन आने वाले हैं, अपने को तैयार करें हम सभी बहुत अच्छी तरह। ये समय किसी भी चीज में अपनी स्थिति को बिगाड़ने का नहीं है, ये चैलेंज ले लें। मेरा अनुभव था, ये बहुत साल तक मैंने किया, कुछ भी हो जाए कोई मेरी स्थिति को बिगाड़ ही नहीं सकता, कोई कुछ भी कर ले मेरी स्थिति पर मेरा कंट्रोल। तो बहुत अच्छे अनुभव रहे, ऐसे दृढ़ संकल्प हमें पावरफुल बना देते हैं और सब अच्छा होता है। इसलिए सभी भाई बहने 4 घंटे योग का प्लान बनाएं, इसके बिना माया को जीता नहीं जा सकेगा, मजा नहीं आएगा इस ब्राह्मण जीवन में। सब अपना अपना प्लान बनाएंगे ना, रोज याद दिलाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ढीले रहते हैं ब्राह्मण प्लान बनाने में। अपना प्लान बनाएंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।
नियंत्रित स्वरूप।